ओम शांति। आज के सत्र में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी क्रीना दीदी जी उपस्थित है। दीदी जी एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की पढ़ाई की। आप 40 वर्षों से संस्था से जुड़े हुए हैं और पिछले 35 वर्षों से आपने अपना जीवन संपूर्ण ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। वर्तमान समय आप विले पार्ले मुंबई सब जोन के अंधेरी लोखंडवाला सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की वरिष्ठ फैकल्टी हैं। भारत के अनेक स्थानों पर विभिन्न व्यापारी संगठनों एवं उद्योग समूहों में आप कार्यक्रम कराते रहते हैं, जैसे कि राजयोग शिविर, कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन एवं वर्कशॉप आदि। आपने अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है, 4 संयुक्त राष्ट्र परियोजनाओं में भाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान मुंबई से दिल्ली तक एक रैली जिसमें संयुक्त राष्ट्र में संगठन का प्रतिनिधित्व किया गया, 1,00,000 मिनट की शांति एक वैश्विक पहल, बेहतर दुनिया के लिए वैश्विक सहयोग, मैं शांति की प्रतिज्ञा करता हूँ। आपने विभिन्न कंपनियों उद्योग समूहों में कार्यक्रम कराए हैं, जैसे कि नागार्जुन उद्योग समूह, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, रिलायंस, बीपीसीएल, पाले उत्पाद, गोदरेज और कई अन्य। आपने ईश्वरीय ज्ञान और योग को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण किया है। आपका जीवन हम सबके लिए दीदी जी प्रेरणा का स्रोत है। कुछ पंक्तियां दीदी जी के लिए कहना चाहती हूँ। रूहानी चैतन्य मूरत हो आप, दिव्य अलौकिक सूरत हो आप, ज्ञान गुण विशेषताओं से संपन्न अमूल्य रत्न हो आप, जगाते सबको सत्व ज्ञान का प्रकाश, फैलाते रूहानी खुशबू, परमात्मा से करते रूबरू। अब दीदी जी के मुख कमल से हम ज्ञान सुनेंगे, धारण करेंगे। बहनों से नम्र निवेदन है, दीदी जी का स्वागत करेंगे।
शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार क्यों कहा? पहला ओम शांति माना मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। पहले अपनी स्मृति, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। देह का धर्म बाद में आता है, पहले स्वधर्म में भी स्थित होना सबसे जरूरी है। दूसरा ओम शांति मैं आत्मा जहां से आई हूं मेरा निज धाम ये भी शांति धाम है, अपार शांति वाला धाम। मेरा घर शांति से परिपूर्ण है। तीसरा ओम शांति। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, अविनाशी रूप से अनादि काल से। हर जन्म में हमें माँ बाप मिलते हैं, लेकिन आत्मा के अविनाशी रूप से जो पिता है, माता पिता है, वो शांति के सागर है ओरिजिनली परमानेंटली। इसीलिए तीन बार ओम शांति किया जाता है। आज अब सबका बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपको वापस जाके प्रैक्टिस करना है। तो अभी तक कैसे फील हो रहा है? जिनको अच्छा फील हो रहा है वो हाथ एक हाथ खड़ा करे। बहुत अच्छा। तो फिर आप ज्ञानी बन गए, योगी भी बन ही जाएंगे। हाँ, कोई डाउट नहीं है। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। गीता में यही तो वर्णन है। भगवान कहते हैं, मुझे सभी आत्माओं में से ज्ञानी तू आत्मा बहुत मेरे दिल के करीब है, लेकिन योगी तू आत्मा तो मेरे दिल में बसे हुए है। तो कहाँ रहना है, दिल के करीब या दिल में? अभी से लक्ष्य तैयार करो कि मुझे कहाँ रहना है, परमात्मा के दिल के करीब या दिल में। तो फिर क्या बनना पड़ेगा? राजयोगी। हाँ, योगी तो हम ऑलरेडी है सभी। योगी तो हम सब ऑलरेडी है। इधर कोई बैठा जो कहे नहीं मैं योगी नहीं हूं? है कोई ऐसा? सभी योगी है, क्योंकि हरेक को अपने कर्म के साथ सदा कनेक्टेड रहने का अभ्यास है। हरेक को कोई ना कोई व्यक्ति के साथ संबंध में रहने का अभ्यास है। हरेक व्यक्ति को कोई ना कोई चीज के सदा करीब रहने का अभ्यास है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। हाँ, मोबाइल कितना करीब रहता है। हरेक को कोई ना कोई जगह के साथ सदा कनेक्शन रहता है, जैसे अपना घर या अपना ऑफिस, है ना? तो पहला क्या बताया, राजयोग माना कनेक्शन, जोड़, लिंक। तो हम योगी है ना? कोई कोई देवी या देवता के बहुत करीब होता है, वो भी योग है, है ना? सबसे पहले जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें पहले क्या दिखाई देता है? हम पहले मंदिर में जाते हैं, सामने जाते ही पहले क्या दिखाई देता है? मूर्ति। सही कहा, मूर्ति। मूर्ति किसको कहा जाता है? जिसने जो मूर्तिकार होता है, उसने जो घड़ा है, उसे क्या बोला जाता है? मूर्ति। तो हम किसका दर्शन पहले करते हैं, भगवान का या मूर्ति का? भगवान का या मूर्ति का? सही रीति से बताना, भावना से केवल नहीं बताना। पहले मूर्ति का दर्शन करते हैं, है ना? जब तक हम अपने अंदर भाव प्रकट न करें तब तक तो मूर्ति का ही दर्शन है ना? तो वो मूर्ति भी सामने जो होती है, उनका भी हमारी तरह शरीर का आकार होता है, हमारी तरह हाथ पैर होते हैं, हमारी तरह चेहरा होता है ना। थोड़ा एडिशनल कभी कभी हाथ ज्यादा होते हैं या कभी अलग अलग स्वरूप दिखाया जाता है, पर उनको हम देवी देवता या धीरे धीरे फिर भगवान कहने लगते हैं। जितना हमारी अंदर की अवस्था कम होती जाती है, उतने वो देवी देवताएं भी हमारे लिए भगवान बन जाते हैं। आज तो इतनी अवस्था कम हो गई है कि कईयों के लिए अमिताभ बच्चन भी भगवान है, कईयों के लिए एक साइकिल भी भगवान है, कईयों के लिए चूहे भी भगवान है। वैरायटी हो गई है आज। राजयोग माना क्या? राजयोग माना सबसे पहले खुद के साथ कनेक्शन, बाकी सब छोड़ो। जितना भी आप बाकी सबको पकड़ने जाओगे ना, खुद से दूर होते जाओगे। तो क्या मतलब है? पाना अपने को खोना, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना। पाना ही पाना होना चाहिए ना, कि पाना एट द कॉस्ट ऑफ अपने को खोना, ये तो लॉस हो गया। इसलिए राजयोग माना सबसे पहला कनेक्शन हम अपने आप से जोड़ते हैं। अपने आप से जोड़ना माना थोड़े क्षणों के लिए ये शरीर का भान भूलकर हम अपने को एक तेजस्वी प्रकाश का बिंदु, ऊर्जा का स्वरूप देखे अपनी मन और बुद्धि की आंख से। ये कौन बोल रहा है? ये मुख बोल नहीं सकता जब तक वो ऊर्जा काम न करे। हाँ, मुख भी हमको ठीक चाहिए। अगर मुख भी ठीक नहीं है तो भी ऊर्जा बोल नहीं पाएगी, क्योंकि संसार का नियम है कि ये देह जरूरी है ताकि ऊर्जा अपने आप को सारे कार्य में ला सके। ऊर्जा तो दिखाई नहीं देती है, जिसको हमने शास्त्रों ने हर एक व्यक्ति ने नाम दिया आत्मा, सोल, नाम दिया है। महसूसता क्या है उसकी? अगर आप नाम भी नहीं लो तो भी महसूसता क्या है? ऊर्जा। जैसे स्विच चालू करने से पंखा, लाइट सब होता है, उसके पीछे अदृश्य रूप से क्या काम करता है? क्या काम करता है? ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही ये मुख द्वारा, कान द्वारा, आंखों द्वारा क्या काम कर रहा है? ऊर्जा। वो ऊर्जा ही मेरा सत्य स्वरूप है। तो क्या हम रोज केवल अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं? जैसे सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में हम क्या जगाते हैं? दीपक जगाते हैं, लौ जगाते हैं, वो ऊर्जा का स्वरूप है। तो सबसे पहला नियम ये है कि सबसे पहले अपनी ऊर्जा का दर्शन करो। ये राजयोग मेडिटेशन का पहला स्टेप। कुछ नहीं दूसरा करो, बैठ जाओ कहीं भी, कोई भी कंफर्टेबल जगह पर, या कार्य करते भी क्या महसूस करते जाओ। ये हाथ से कौन लिख रहा है, पैरों से कौन चल रहा है, मुख से कौन बोल रहा है, मन से कौन सोच रहा है, ये निर्णय कौन ले रहा है, ये फीलिंग किसको आ रही है? एक ही शब्द बताओ, बोलो, साथ में बोलो, क्या महसूस होता है, कौन बोल रहा है? हम माना कौन? आत्मा, ऊर्जा। भले आत्मा जल्दी से न आवे तो कोई बात नहीं, ऊर्जा तो हम हर एक सेकंड महसूस करते हैं, तो ऊर्जा कहने में तो कोई आपको ये नहीं है ना दिक्कत। ऊर्जा के बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं चल सकता, तो ये शरीर कैसे चलेगा? तो हमारा सत्य स्वरूप कौन सा है, एक बार फिर से बोलो। ऊर्जा स्वरूप। तो अपनी ऊर्जा को सतत महसूस करेंगे ना। आप सोचो, ये एक हाथ की कीमत अगर कोई कहता है मैं 50,000 रुपया देता हूं, मेरे को एक हाथ दे दो तुम्हारा, दे देंगे? इतना कॉस्टली है देखो, तो भी हम नहीं देते हैं। जो पैसों के लिए जी रहे वो भी अपना हाथ नहीं देंगे। तो फिर ऊर्जा तो उससे भी शक्तिशाली है। ऊर्जा तो हमें पहाड़ जैसी परिस्थितियों से भी आगे ले जाती है। ये ऊर्जा वैज्ञानिकों द्वारा कितने सारे सर्जन कर रहे हैं, जो हम सबको सुख सुविधा दे रहे हैं, कौन करा रहा है? ऊर्जा। हम उसको कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि दिखाई नहीं देता है, बस। अब याद रखना, मैं ही ऊर्जा स्वरूप हूं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। जो ये महसूस करना जान जाएगा ना, मना आ जाएगा ना महसूस करना, वो हर एक अपने संबंध को महसूस करना समझ जाएगा। आज क्यों संबंधों के बीच में तकरार है? नहीं महसूस कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को ही महसूस नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे संबंधों को क्या महसूस करेंगे? इसलिए अगर आपको संबंधों में भी प्रगति करनी है, सुधार लाना है, तो पहले अपनी ऊर्जा को महसूस करो। फिर जब आपको विश्वास आ जाए तो आप भले आत्मा कहना जरूर, क्योंकि हमारे बहुत पुराने शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव करके नाम दिया है आत्मा। मना अंतर का मैं, आत्मा मना अंतर का मैं, जिसके लिए शब्द है अंतर्मुखी। अंतर का जो मुख है वो मैं आत्मा। बाहर मुखी माना, जो बाहर का मुख ज्यादा यूज करते हैं वो बाहर मुखी। कितने ऐसे शब्द हैं जो हमें आत्मा की महसूसता कराते हैं? तो सबसे पहला कनेक्शन राजयोग का है अपने आप से कनेक्टेड होना, क्योंकि यही दरवाजा है परमात्मा से कनेक्ट होना, जो सर्व आत्माओं के परम पिता, परम मां बाप है। क्यों आत्मा के परम पिता है? क्योंकि जैसे आत्मा अदृश्य ऊर्जा है, ऐसे सारे देवी देवताएं जिनको हम भगवान कहते हैं, उनके रचता निराकार ऊर्जा है, सर्वोत्तम ऊर्जा है, परम ऊर्जा है, जिनको परम आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा कहा जाता है। ये समझना सहज है कि डिफिकल्ट? खाली ध्यान से, खुले मन से सुनना है, हम कहीं से भी दूर नहीं जा रहे हैं। जो हमारा खुद का परिवार है, हम उससे दूर कैसे हो सकते हैं? ये सारे देवी देवताएं हमारा ही परिवार है, हमारे पूर्वज है, हम उनसे दूर कैसे हो सकते हैं? लेकिन सत्य तो समझना पड़ेगा ना, कि इन सबको इतना पुरुषोत्तम बनाने वाला कौन, जो स्वयं कभी जन्म मरण में नहीं आते, लेकिन सर्व आत्माओं की गति, सदगति, पतित आत्मा को पावन बनाने की योग्यता जिनमें है, वो है परमात्मा। इतना समझने में कुछ हमारा खोता नहीं है, उल्टा हम पाते हैं। हम अपने पूर्वजों के भी नजदीक आएंगे तो कितनी अच्छी बात है। अभी पितर गए, क्या किया आपने? क्या किया? अपने पूर्वजों को याद किया ना, उनके प्रति भोग लगाया ना, फिर ये देवी देवताएं कौन है? हमारे पूर्वज है। और अगर हमको उनके ही समीप उनके जैसा बनना है, अपने पूर्वजों की तरह, तो हमें राजयोगी बनना है, माना अपने को आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है। मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने का एग्जाम्पल है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट है, उपग्रह जो बोलते हैं, सैटेलाइट है, और नीचे मोबाइल, टेलीविजन और ये सारे यंत्र बिना वायर के काम करते हैं। कैसे? ये वायरलेस कनेक्शन है ना, किसने बनाया? हमने बनाया। तो ये हमारा ओरिजिनल है अंदर, कि हम कोई भी वायर के बिना भी वायरलेस कनेक्शन कर पाते हैं। तो भले परमात्मा परम धाम में है, शांति धाम में है, माना सैटेलाइट हमारा परम धाम शांति धाम में है और हम आत्माएं इस धरती पर है, लेकिन हमारा वायरलेस कनेक्शन है। शायद हमने काट दिया था, जैसे एंटीना पहले हिल जाता था तो टीवी पे बराबर पिक्चर नहीं आता था ना, तो क्या करना पड़ता था? टेरेस पे जाके उसको हिलाना पड़ता था। ऐसे भाई हमें अपने मन बुद्धि को हिलाने की जरूरत है, उसको सेट करने की जरूरत है, और ताकि वो परमात्मा के साथ परम धाम में जुड़ जाए। याद रहेगा ना, मुझे क्या करना है? मुझे भगवान इधर आओ इधर आओ इधर आओ कहने की जरूरत नहीं है। आप यहां से मन बुद्धि से कनेक्टेड रहो, तो वो कनेक्शन ऑलरेडी है। सोचो, सूरज की एक प्रकाश की किरण आपके लिए है, कोई इधर बैठा कहेगा नहीं मेरे लिए तो है ही नहीं, तो वो ज्ञान का सूर्य है, शक्तियों का सूर्य है परम धाम में, तो क्यों उनका नहीं होगा हम एक एक के लिए? अगर हमारे मन और बुद्धि उस डायरेक्शन में रहती है, निश्चय है कि मेरे ऊपर परमात्मा की शक्तियों की किरण है ही, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते फिरते आप उस परमात्मा शिव परमात्मा की किरणों में आप चलेंगे भी, कर्म करेंगे भी, बस याद, उसको याद बोलते हैं। योग का सहज अर्थ है याद रखो, भूलना नहीं, समझा? राजयोग का एक दूसरा हिस्सा है, पहला है कनेक्शन करना, दूसरा है कि केवल कनेक्शन करने से भी कई बार हम भूल जाते हैं, कर्म में ज्यादा ध्यान जाता, व्यक्ति वस्तु में, कामकाज में ज्यादा ध्यान जाता है, परिस्थिति में, तो कई बार हमारा कनेक्शन टूट जाता है, माना हम भूल जाते हैं। तो उसको और टाइट करने के लिए हमें एक मेथड रखनी पड़ेगी, और वो है बार बार दिन में कोई ना कोई वार्तालाप करते रहो परमात्मा के साथ। खाली मांगनी नहीं करो, वार्तालाप करो, जैसे आप अपने प्रिय जन के साथ कैसे वार्तालाप करते हैं, ऐसे आप परमात्मा के साथ वार्तालाप करो। इसमें एक और कंडीशन है, कई बार हम परमात्मा से डरते हुए बात करते हैं, परमात्मा कभी हमारे अंदर डर पैदा नहीं करते हैं, वो केवल हमें निस्वार्थ प्रेम सिखाते हैं, उनका निस्वार्थ प्रेम होता है। तो हमें भी कैसे वार्तालाप करनी है? प्रेम पूर्वक वार्तालाप करनी है। दिन में आपने कितनी बार उनसे वार्तालाप की महसूस करो, कितनी बार आपने अपने संबंधियों के साथ मोबाइल पे कितनी बार बात की, और कितनी बार परमात्मा से मनी मन बात की। मन से बात करते हो ना, है ना? मन में बात करते रहते हो ना आप लोग? कोई ऐसा है जो कहता नहीं मैं तो मन में बात नहीं करता हूं? सब बात करते हैं, आता है मन में बात करना। तो वही बातचीत आप परमात्मा के साथ करो, उनका भी मन ही आपके साथ जुड़ जाएगा। मन मन से मिलना चाहिए ना, तो अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी तो हमसे पाप कर्म होता है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे उनके साथ, पाप कर्म कम होते जाएंगे, आपका विवेक जागृत हो जाएगा, आप अच्छा बुरा महसूस करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, ताकत आएगी कि मैं करके तो देखूं, प्रयोग तो करूं, इतनी हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। तीसरा है, पहला क्या बताया? कनेक्शन। दूसरा वार्तालाप करना ही है। तीसरा है कोई ना कोई संबंध जरूर परमात्मा के साथ, आत्मा का परम आत्मा के साथ संबंध। कौन सा संबंध होगा? पहले तो था भगवान और भगत, है ना? ये संबंध था ना, भगवान और भगत। फिर भक्ति में भी जैसे यशोदा मैया ने ये दिखाया कि नहीं वो मेरे बच्चा है, नरसिंह मेहता ने वो बताया ये मेरे मित्र है, किसी ने ये बताया मेरे भाई है, ऐसे अलग अलग संबंध। जैसे अर्जुन ने बताया कि मेरा गाइड है, ऐसे अलग अलग संबंध भक्ति में दर्शाए गए हैं। तो अब हम क्या करें, कौन सा संबंध निभाए? निभाना है, पर पहले बनाए तो सही, बनाने के बाद ही निभा सकते हैं। तो भगवान के साथ कौन सा संबंध निभाए, कौन सा संबंध जोड़े? कोई एक ऐसा है संबंध? किसी ने भाई भी बनाया, किसी ने फ्रेंड, किसी ने बच्चा, किसी ने गाइड, किसी ने टीचर, अलग अलग संबंध करके दिखाए। तो अब आत्मा को क्या करना चाहिए? परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का टेस्ट लेना चाहिए, स्वाद। आप मेरे माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, शिक्षक भी हो, सद्गुरु भी हो, बच्चा भी हो, पार्टनर भी हो, लाइफ पार्टनर भी हो, प्रियतम भी हो, लॉयर भी हो, जज भी हो, डॉक्टर भी हो, सर्जन भी हो, साथी हो, और कोई संबंध है, जो भी संबंध हो, वो सारे संबंधों का स्वाद आत्मा को परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। चलेगा? चलेगा कि अगर वो आपकी बात मानेंगे तो ही आप करेंगे? कौन कहता है भगवान मेरी बात नहीं मानते? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है इस हॉल में? तो जब भगवान आपकी बात मानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उनको सर्व संबंधी बनाना चाहिए, क्योंकि वो चीज आप दुनिया में किसी के साथ नहीं कर सकते। कोई एक व्यक्ति के साथ आप कभी सब संबंध नहीं बांध सकते। आपको अलग अलग दिशाओं में दौड़ना ही पड़ेगा अलग अलग संबंधों से प्राप्ति करने के लिए। और यहां आपको फुल चांस है एक के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति करना। तो इजी है कि डिफिकल्ट है? वहां कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक अलग अलग व्यक्ति के पास जाके प्राप्ति करना, और ये तो और इजी हो गया एक के साथ सर्व संबंधों का स्वाद लेना और उन द्वारा प्राप्ति की अनुभूति करना। एनर्जी, टाइम, मनी सब बच जाएगा और आपकी प्राप्ति होती रहेगी। आप वही प्राप्ति अपने संबंधियों के साथ शेयर करो। इतनी मेहनत करते हैं एक एक संबंधी को संतुष्ट करने के लिए, कितना टेंशन होता है, कितनी बीमारियां आती है, लेकिन इसका एक ही सल्यूशन है, उनसे सर्व संबंधों की अनुभूति कर जो प्राप्तियां होती है वो सबके साथ बांटो, उनको भी वो भाग्य प्राप्त हो जाएगा, उनको भी वो प्राप्तियां सहज हो जाएंगी। और ये अविरल है, अविरल है। परमात्मा का स्टॉक कभी कम नहीं होता है, वो कितनों को भी दे दे तो भी वैसे के वैसे रहते हैं। ये उनका कमाल का पार्ट है परमात्मा का। जब ऐसा सोर्स है अपने पास, ऐसा स्रोत है अपने पास, हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं, कैसे उसको मिस कर सकते हैं। हर एक संबंध द्वारा आत्मा को इतनी प्राप्ति की अनुभूति होती है कि आप कहां भी जाओ, देते जाओ, आप में भी कभी कमी नहीं होगी। तो ये तो बहुत भारी सौदा है। सब बिजनेस वाले बैठे हैं ना, इतना भारी सौदा है प्राप्ति प्राप्ति जीवन में, और बिना खर्चे की, बिना टाइम वगैरह वेस्ट करे, बिना आपको अधिक प्राप्ति और कम खर्च। अभी सबकी कंप्लेन यही है कि हमारे बिजनेस में हमारा खर्चा इतना सारा होता है और प्राप्ति उतनी नहीं होती है। और ये एक मेथड है जिसमें आपको खर्चा कम, प्राप्ति ज्यादा, आपका बिजनेस हो, परिवार हो, आपका सोशल हो, जो भी हो, उसमें आपको प्राप्ति प्राप्ति महसूस होगी। कईयों को भ्रांति है कि यहां करने से, राज्योगी बनने से हम पूरे संसार को छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ सकते, हमने भी नहीं छोड़ा, हम भी संसार में ही है क्योंकि आप सबके बीच में ही रहते हैं। हमको सेंटर भी सब कुछ संभालना पड़ता है जैसे आप गृहस्थ में संभालते हो। हाँ, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स रखे हैं ताकि जब आप हमारे पास आओ तो आपको कुछ अलग महसूस हो। वही का वही महसूस होगा तो क्या मतलब है। इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं ताकि जब भी आप आओ तो आपको कुछ लगे कि नहीं, सेंटर पर गए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति फील हुई, कुछ महसूस हुआ, शक्ति। तो प्रिंसिपल्स रखने पड़ते हैं। पहले तो हर गृहस्थ में प्रिंसिपल्स होते थे। अगर अभी गृहस्थ व्यवहार में अगर प्रिंसिपल्स कम हो गए हैं तो उसमें कोई भगवान का दोष नहीं है, है ना। तो इसीलिए समझो इस बात को, समझेंगे तो आपको प्राप्ति प्राप्ति है। तो राजयोग माना आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ अथवा लिंक, वार्तालाप और सर्व संबंधों की अनुभूति। क्लियर हुआ? मुझे कनेक्ट भी रहना है, मुझे वार्तालाप भी करते रहना है दिन में कई बार। कोई भी वार्तालाप, आपका अनुभव सुनाओ, आपको कुछ बातें याद आती है उनसे शेयर करने के लिए वो सुनाओ। हर चीज की वार्तालाप आप परमात्मा के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव 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 ही बात करते रहेंगे उनसे तो आपको उनकी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत कम हो जाएगी। जैसे लाइट टिमटिमाने लगती है ना, ऐसे हो जाएंगे, तो फिर उनके द्वारा प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए अच्छी बातें, शक्ति देने वाली बातें, ताकत देने वाली बातें, ज्ञान की वृद्धि करने वाली बातें आपको परमात्मा के साथ करनी है और संबंध जोड़ने हैं। आज से आप मेरे माता भी हो, पिता भी हो। जैसे माता पिता की पालना द्वारा बच्चे का संस्कार होता है, बच्चे का जो है बड़े होने की जो आशा है और जिस रीति से होनी चाहिए वो महसूस होती है, ऐसे ही माँ बाप के रूप से परमात्मा भी हमारी पालना करते रहेंगे। और वो ऐसे माँ बाप नहीं है जो वृद्ध होने के बाद अपेक्षा रखेंगे मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, नहीं, वो सदा देते ही रहेंगे। तो इसीलिए हर संबंध में आपको बहुत सारी प्राप्तियां हैं, बस सुख शांति संपन्नता, यही तो परमात्मा की देन है। इसका मतलब ये नहीं कामकाज न करे, इधर जब तक है धरती पर हमारे हाथ पैर चलने चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए अंत तक। तो राजयोग के अभ्यास करने के चार मुख्य आधार है। पहला आधार है मुझे आत्मा और परमात्मा की सही पहचान पता चल गई कि मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं, मुंझा हुआ हूं। आत्मा किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, तो फिर सेंटर पर वापस जाके फिर से कोर्स कर ताकि क्लैरिटी मिले। कोई भी प्रश्न हो तो वहां पूछ सकते हैं। पर सबसे पहली बात राजयोग के अभ्यास में चार आधार, पहला सही पहचान होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। कई हमको पूछते हैं, बहन जी जब हम ये मेडिटेशन करें तो क्या हम अपने गणेश जी को याद कर सकते हैं, क्या हम अपनी माँ देवी को याद कर सकते हैं? तो हम कहते हैं जब आप खुद आत्मा ऊर्जा के स्वरूप में है, आप कैसे कोई देह वाली कोई भी आत्मा को देह के साथ कैसे याद कर सकते हैं? वो आपके पूर्वज परिवार है, उनको रिस्पेक्ट जो सम्मान है वो कभी कम नहीं करना। जब भी उनके मंदिर से पास हो तो नमन करना, लेकिन राजयोग में उनके भी रचयिता निराकार परमात्मा के साथ आपको कनेक्ट होना है। तो सही पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंझे हुए नहीं रहना। करो न करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। दूसरा है कोई ना कोई संबंध, ये भी आधार है। अगर नई संबंध जोड़ा तो आपका राजयोग की विधि में अंतर पड़ जाएगा। ये विधि में है कि संबंध होना जरूरी है कोई ना कोई, तो ही याद हमारी बनी रहती है। संबंध के बिना याद नहीं ठहरती है। तीसरा है आपसी प्रेम। जब आप संबंध बनाते जाएंगे और फिर समय पर निभाते जाएंगे तो क्या होगा, अंदर से क्या आएगा, प्यार होगा ना। कहते प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। जब संबंधों के साथ चलते रहते हैं, प्राप्तियों की अनुभूति होती है, तो प्यार हो जाता है। अटैचमेंट वाला प्यार नहीं, निस्वार्थ प्यार, सबको देने वाला प्यार, विशाल हृदय वाला प्यार। तो ये आपसी प्रेम, आत्मा का परमात्मा के साथ, परमात्मा को आत्मा के प्रति, म्यूचुअल फीलिंग होना बहुत जरूरी है राजयोग में। चौथा है आपसी लेन देन द्वारा प्राप्तियां। हाँ, व्यवहार में भी आप परमात्मा को नहीं भूलते हो, हर व्यवहार में उनको पहले रखते हो, तो क्या होगा, प्राप्ति होनी ही है, क्योंकि वो तो प्राप्तियों का भंडार है, प्राप्तियों की खान है। तो अब जो व्यवहार करो साथ में लेन देन होती रहे। जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति और बच्चा भी अपनी माँ को कितना प्यार देता रहता है, ज्यादा देर किसी और के साथ नहीं रहेगा, फिर माँ माँ करता हुआ आएगा। ये जो निस्वार्थ प्यार और आपसी लेन देन है वो आत्मा और परमात्मा के बीच, जैसे दो खरे दोस्त होते हैं, वो कौन होता है जो हर समय अपने साथ खड़ा रहता है, ऐसे सच्चे दोस्त की तरह आत्मा और परमात्मा की लेन देन होती रहे तो प्राप्तियों की अनुभूति होंगी। तो समझा चार आधार, इसमें कहीं पर डर है, इसमें कहीं पर कोई ट्रेडिशनल क्या कहेंगे ऑब्लिगेशन है कि मेरे माँ बाप मेरे परदाता ने ये मंदिर बांधा था इसीलिए हम ये कंटिन्यू करते हैं, हम भी करते हैं, भले उनको उतने भाव नहीं होगा लेकिन परदाता ने किया है इसलिए हम करते, ऐसा कोई भाव इसमें है? जरा भी नहीं है। कोई डर भी नहीं है, कोई लालच है? परमात्मा के साथ जुड़ने में लालच ही खत्म हो जाती है क्योंकि वो सब देते ही रहते हैं, अब जो देता ही रहता है फिर उसमें लालच कैसे आएगी। तो ये चार हमारे मुख्य आधार है। संबंधों में बताया, जैसे आपको पहले ही समझाया कि हमको बचपन से संबंधों की आदत है। पहला संबंध मां और बच्चे का, बच्चे को क्या फीलिंग आती है कि वो मां के साथ सदा जुड़ा रहता है कि मुझे जो कुछ मिलना है ना मेरी मां से मिलना है, इसलिए वो मां के सिवाय किसी के पास नहीं जाता है। जहां उसे फील होता है मेरी सारी दुनिया की प्राप्तियां मुझे जहां से मिल रही है बस वही मेरी दुनिया, तो बच्चे का योग मां के साथ सबसे ज्यादा होता है। फिर वही बच्चा जब स्टूडेंट बन जाता है तो फिर पढ़ाई के टाइम, एग्जाम के टाइम उसका ध्यान ज्यादातर पढ़ाई और एग्जाम की तरफ होता है, तब पूरी उसकी दुनिया वही बन जाती है। जब वो दोस्तों के साथ होता है तो दोस्तों के साथ उसको दुनिया हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है नहीं मुझे अभी मेरे दोस्तों से ही मिलता है, जो माँ बाप से भी नहीं मिलता वो दोस्तों से मिल रहा है। जहां उसकी दुनिया बन जाएंगी ना वहां उसका योग परफेक्ट होगा। फिर जब नौकरी धंधा आ जाता है तो क्या होता है, दोस्त भी पता नहीं कौन सी प्रायोरिटी में चले जाते हैं और पढ़ाई लिखाई तो खत्म हो गई, फिर पूरा ध्यान पूरी दुनिया किस पे हो जाती है, अपने कामकाज के साथ हो जाती है। हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा अपने कामकाज पे जाती है क्योंकि लगता है वहीं से प्राप्तियां हो रही है। फिर जब शादी होती है तो ऐसा महसूस होता है किसी को कहना नहीं पड़ता है कि भाई अब आज के दिन से आप इनको प्यार करना, यही आपके जीवन साथी है, समझ ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ जाता है और समझ में आ जाता है बस इनसे ये मेरी दुनिया है अभी। फिर जब बच्चे होते हैं तो फिर वो दुनिया बच्चों पे ट्रांसफर हो जाती है। हस्बैंड भी नौकरी से आएंगे तो कहेंगे अरे बच्चे किधर है, और माँ भी सारा दिन बच्चों के पीछे होंगी, हस्बैंड को भी पानी बाद में देगी, बच्चे का काम पहले करेगी, तो पूरी दुनिया जो है वो बच्चों में चली जाती है। फिर जब बीमार पड़ते हैं तो कौन याद आता है, जब बीमार पड़ते हैं तो कौन याद आता है, डॉक्टर है ना, कोई घर की दवाई दिखा, नहीं नहीं ये अपने ही, तो पहले तुम डॉक्टर को बुलाओ, तो डॉक्टर पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई इनसे ही हमको प्राप्ति होगी। फिर डॉक्टर कहता है नहीं आपको सर्जरी की शायद जरूरत है, इस सर्जन को मिलो, तो वो डॉक्टर से भी योग टूट जाएगा, सर्जन के साथ ही जुड़ जाएगा। फिर जब सर्जन कहता है कि भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, हा? अभी तो उस पे ही आधार है, तब हम क्या करते हैं, कोई भी सामने हो हॉस्पिटल में जो भी मूर्ति होगी उसके सामने जाके बैठ जाएंगे, भगवान प्लीज बचा लेना, भगवान प्लीज। दो तीन दिन तक वहीं बैठे बैठे रोते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, तब हमारी दुनिया कौन सी हो जाती है, एक भगवान से ही प्राप्ति फील होती है। डॉक्टर ने भी छोड़ दिया, सब जगह से दरवाजे बंद होने लगे तो लास्ट ये दरवाजा खोलते हैं। अभी जो दरवाजे से हमको प्राप्तियां होनी ही है उसको लास्ट में क्यों खोलते, हम पहले से क्यों नहीं खोलते हैं? राजयोग का कहने का तात्पर्य है कि पहले से ही जैसे जैसे आप जीवन की हर स्टेजेस से पार होते हो तब से आप परमात्मा के साथ कनेक्शन कर लो तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन के हर फेज में आपको प्राप्तियां फील होंगी। एंड तक आपको इमरजेंसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, भगवान कोई इमरजेंसी का द्वार नहीं है, भगवान हमारे सर्व प्राप्तियों का द्वार है आत्मा के लिए। तो इसीलिए सर्व संबंध से याद करना बहुत बहुत जरूरी है। राजयोग की विधि के मुख्य कुछ बातें, सबसे पहले जो पहचान हमको मिल रही है वो एक और सत्य होनी चाहिए, दो नहीं, सिर्फ एक। हमको एक पहचान क्या मिली, ऊर्जा, बस ऊर्जा जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसको दूसरा नाम दिया है शास्त्रों में निराकार, ऑपोजिट ऑफ आकार। ये आकार है, निराकार माना इस आकार के बिना, ऊर्जा स्वरूप। तो एक ही परिचय होना चाहिए और वो सत्य होना चाहिए। सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य एक है और सदा काल का है, टेम्पररी नहीं हो सकता, सदा काल का। दूसरा, उसमें संशय या मूंज फिर नहीं आनी चाहिए। कई मनुष्य है जो बाद में फिर मूंज जाते हैं, मूंज गए तो कनेक्शन कट हो गया, सिंपल सिंपल। कनेक्शन कट हो गया तो आपका योग नहीं लगेगा, वो कट नहीं करता है, कट हम ही करते हैं। तो इसीलिए संशय या मूंज फिर नहीं आनी चाहिए। एक बार एक को जाना, सत्य को पहचाना, फिर मूंज नहीं आनी चाहिए। तीसरा, और कई बातें आएंगी मुंझाने के लिए, लेकिन आपको उसी सत्य में जीना है। दूसरा, तीसरा, जब भी आप परमात्मा से मिलो, कनेक्ट हो, तो समान भाव से मिलने की कोशिश करो, नीचाई ऊंचाई के भाव से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप तो सर्व गुणों से संपन्न हो, मुझ में तो कोई गुण नहीं, ये हो गया ऊंचाई नीचाई का भाव। आप सर्व गुणों से संपन्न हो, आप मुझे गुणवान बना रहे हो, ये हो गया समान भाव। समान भाव का पता चला? आप, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूं, ये क्या हो गया? नीचाई का भाव। आप मुझे अपने चरणों की धूल से सिर का ताज बना रहे हो परमात्मा, ये है समान का भाव। हमको पता है हम कौन सी नीचाई तक गए हैं, लेकिन अभी उठना है ना, उठना है, सक्सेसफुल बनना है, तो हमें नीचे के भाव को छोड़ना होगा, नहीं तो जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। चौथा, परमात्मा से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो देता ही है, वो दाता है, वरदाता है, विधाता है, हम क्यों मांग रहे हैं? किसने हमको सिखाया मांगना? माँ बाप तो हमेशा पॉकेट खर्चा देते ही थे, कभी मांगना नहीं पड़ता था कि पापा मुझे खर्ची चाहिए, मिलता ही था। तो परमात्मा तो परम बाप है ना, वो तो देता ही है, हम क्यों मांगते हैं? कुछ नहीं है आपके पास, प्रयास चालू रखो, ऐसे कर्म करो जो स्वतः आशीर्वाद मिले। सब रास्ते हैं, मांगने का रास्ता किसने सिखाया? ये मांगते मांगते देखो आज भिखारी लोग कितने बढ़ गए हैं, मांगने वाले। कोई ने पहली बार भगवान से मांगना शुरू किया होगा ना, आज ये रिजल्ट है। आज कोई भी धंधा भी करते हैं तो बड़े से बड़े अमीर लोगों को भी लोन लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है। ये कैसा समाज है ना? तो इसीलिए हमको अपने आप को बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है। पांचवा, उनसे रोज मीठी मीठी बातें जरूर करना। और छठवा, बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान को कभी किसी बात का दोष नहीं देना। कितने हैं भगवान को दोष देते हैं? हाथ खड़ा करो, भगवान ये मेरे साथ ऐसे तुमने क्यों किया, मुझे ऐसा दुख क्यों दिया, मेरा लॉस इतना क्यों कराया? कौन है यहां जो भगवान को दोष देते हैं? अपना समझ के, हाथ नहीं उठाया किसी ने। हमने तो रोज ही रोज हमने यही काम किया है, कोई नहीं मिला तो उसी को दोष दे दिया, हे भगवान तुमने क्या किया। आज से राजयोगी कभी भगवान को दोष नहीं देगा। चाहिए तो महिमा करो लेकिन दोष कभी नहीं देना। इंसल्ट है, भगवान की इंसल्ट है दोष देना। तो इंसल्ट करेंगे तो उस कर्म का क्या भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा महिमा करो पर दोष कभी नहीं देना। अब राजयोग में प्रैक्टिस के लिए दो प्रकार है, एक है कर्मयोग, दूसरा है बुद्धि योग। ठीक है, कर्मयोग माना सुबह से लेकर रात तक जो कर्म करते, कल का ही दिन देख लो, परसों का दिन देख लो, सारा दिन आप लोग इधर थे ना, किनका कनेक्शन रहा परमात्मा के साथ, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रयास तो बहुत अच्छा है सबका। भोजन के लिए गए तो भोजन खाने से पहले किन्होंने परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर खाया, हाथ खड़ा करो। वाह, अच्छा अब बताओ किन्होंने अपने को ऊर्जा समझ के परमात्मा से कनेक्ट किया, हाथ खड़ा करो। कम है ना, तो पूरी विधि नहीं, आदि विधि की। पूरी विधि होने से प्राप्तियों का भंडारा खुल जाता है। मैं ऊर्जा किसको खिला रहा हूं, शरीर को। ऊर्जा थोड़ी खाती है, वो खाली मदद करने का काम करती है। शरीर को ही खिलाना पड़ता है ना। शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए खाना पड़ता है, नहीं तो शरीर कमजोर हो जाएगा तो आत्मा कैसे काम करेगी। तो आत्मा रोज क्या करती है, शरीर को खिलाती है। लेकिन जो शरीर को खिला रही है वो भोजन मुझे और ऊंचा बनाए, मुझे आगे बढ़ाए, मुझे पाप कर्म करने से बचाए, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए परमात्मा की याद में हम इस क्रिया को करें, ऐसे हर क्रिया को करें तो पाप कर्म कम होते जाएंगे और बहुत एनर्जी फील होगी। तो कर्म योग माना हर कर्म करते याद रखो कि मैं ऊर्जा, मैं आत्मा, इस शरीर, ये वाहन, ये जो मेरा साधन है उसके द्वारा कर्म कर रही हूं। करनहार माना करने वाला, करने के लिए जो मदद करता है वो शरीर है, साधन। और करण करावनहार, करण करावनहार माना मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करती हूं। और करण करावनहार माना परमात्मा खुद नहीं करता लेकिन मुझ आत्मा से कराता है। तीन चीज हो गई, करणहार, करावनहार और करण करावनहार। ये तीन का कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्लास है, ये तीन का कॉम्बिनेशन सुपर्ब है, फैंटास्टिक है। शरीर, आत्मा, परमात्मा, करणहार, करावनहार और करण करावनहार, ये तीन को कभी नहीं भूलो। इससे आपके हर कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। एक श्रेष्ठता का अकाउंट भी होता है, एक होता है बुरा, एक होता है अच्छा और एक होता है श्रेष्ठ। जब आप ये मेथड से करोगे, जैसे समझो आपने किसी को दुख दिया तो कौन से अकाउंट में जाएगा, खराब। फिर आपने किसी को खिलाया, अगर कोई भी आया जरूरी मंद को आपने खाना खिलाया, किसके अकाउंट में जाएगा, अच्छा। लेकिन आपने अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करके, उनकी याद से आपने कोई भी कर्म किया, झाड़ू लगाया, कपड़े धोए, बर्तन साफ किए, फाइल पे साइन की, कोई भी कार्य किया, वो कौन से अकाउंट में जाएगा, श्रेष्ठ अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों का अकाउंट जो है ना वो श्रेष्ठ अकाउंट है, श्रेष्ठ कर्म का। हम क्यों देवता, देवी देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि अब हम श्रेष्ठ कर्म के अकाउंट में हमारा जमा नहीं होता है, हमारा खाली अच्छा या बुरे में जमा होता है। और कई तो बिल्कुल हम कहते हैं ना कि मनुष्य अवतार में जैसे असुर, क्योंकि उनका खराब अकाउंट इतना बढ़ चुका है जो बात मत पूछो, है मनुष्य अवतार में लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है अभी, बहुत बड़े। नहीं तो धीरे धीरे हम मनुष्य अवतार में धीरे धीरे हम पीछे हटते जा रहे हैं और पता भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अहंकार की इतनी बड़ी दीवार है ना, अहंकार बताने नहीं देगा कि आप असुर की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए रियलाइजेशन पावर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महसूसता की शक्ति, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, रोज अपने आप से पूछो तो आपको रियलाइजेशन होंगे। दूसरा है बुद्धि योग। बुद्धि योग माना कि बुद्धि कहीं और नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, आप केवल और केवल मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, जैसे हम गीत के पहले गीत में करते हैं, क्लास के बाद करते हैं, दूसरा कोई कामकाज नहीं, कुछ दूसरा सुनना नहीं, कुछ दूसरा देखना नहीं, केवल मेडिटेशन, उसको कहा जाता है बुद्धि योग। कर्म योग तो कर ही रहे हो, लेकिन जब भी टाइम मिले आपको बैठ के बुद्धि योग करना है, भले शुरू आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट से करो, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राप्ति बुद्धि योग से होती है वो कर्म योग से नहीं हो सकती। और वो प्राप्ति क्या है, दो है प्राप्तियां, पिछले किए हुए पाप कर्मों को दग्ध करना, जला देना, भस्म करना, कई जन्मों के अकाउंट है अपने पास जिसको क्लियर करना है, और दूसरा है अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। ये दो बातें केवल और केवल बुद्धि योग के माध्यम से होती है। ओम शांति। जाने वाले लोग ध्यान दे कि इस प्रोग्राम के बाद आपको सौगात गिफ्ट मिलने वाली है, जो गिफ्ट नहीं ली है वो कृपया बैठ जाए और अपनी गिफ्ट लेकर जाए। तो फिर बुद्धि योग में हमको क्या करना है, सबसे पहली बात, बाहर के सारे दुनियावी वातावरण को समेट लेना है, संकीर्ण करना है, बाहर की दुनियावी बातों से अपने मन बुद्धि को, जैसे आप मंदिर में अंदर प्रवेश किया तो बाहर का सारा बंद ना, ऐसे समझो ये मेरा मंदिर है, मुझे इस मंदिर में जाना है, बाहर का सारा खत्म। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मयोग में ये नहीं कर सकते, कर्मयोग में बाहर रहना पड़ता है, लेकिन बुद्धि योग में समेटना है। और कहां पर रहती है आत्मा, निशानी से बताओ, माना यहां नहीं पर दो आंखों के पीछे, ब्रेन मस्तिष्क के आगे, आगे जो खाली जगह है वहां पर आत्मा सितारे की तरह चमकती है, उसको कोई स्टैंड नहीं चाहिए खड़े रहने के लिए, वो ऊर्जा है अपने आप रहती है। कहां रहती है आत्मा, दो आंखों के पीछे और ब्रेन के आगे, जो रिक्त स्थान है वहां आत्मा सितारे के रूप में रहती है। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ, उसी का दर्शन करना। आपने सब बाहर का समेट लिया, अब सेकंड नंबर, अपनी आंखों के पीछे मस्तिष्क के आगे, ब्रुकुटी कहा जाता है उस स्थान को, ब्रुकुटी के स्थान पर अपने ऊर्जा स्वरूप को देखना, सेकंड स्टेप है। महसूस करो, मैं लाइट हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं इन आंखों से न दिखने वाली अदृश्य लेकिन सूक्ष्म तत्व की बनी हुई ऊर्जा, प्रकाश स्वरूप, सितारे की तरह चमकता हूं, जैसे आकाश का सितारा चमकता है ऐसे मैं चमकता हूं, कंटिन्यूअस। तीसरा, आत्मा के ऊपर चिंतन करना शुरू करो। अच्छा, मैं कौन हूं, मैं आत्मा कैसी हूं, क्या हूं, किस चीजों से बनी हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे अंदर क्या है, मन बुद्धि संस्कार वो कैसे चलते हैं, ये सब मनन चिंतन करना ही पड़ेगा, आत्मा की स्टडी करनी पड़ेगी। पहले भले आप बुक लेके स्टडी करो, बाद में आपको अपने आप करना है, ताकि आप दुनियावी बातों में वापस वापस न जाओ, उसके लिए आपको आत्मा का चिंतन करना है। और इसलिए आत्मा का लेसन आपको कराया, विभिन्न बातें समझाई आत्मा की, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन बताया, और आगे लेसन्स होंगे उसमें और आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आत्मा का चिंतन करने के बाद फिर परमात्मा का चिंतन करना है कि वो कौन है, वो कैसा है, कहां पर है, मेरे साथ क्या संबंध है, हाँ, धरती पर क्यों आते हैं, उनका क्या कार्य है, मेरा धरती पर क्या कार्य है, उनका धरती पर क्या कार्य है। ऐसे हर बात का चिंतन करना बहुत जरूरी है। चिंतन आपको नेगेटिव और वेस्ट से छुड़ाएगा, नहीं तो 10 साल के बाद भी कंप्लेन होती है लोगों की, दूसरे विचार तो आ ही जाते हैं, तूफान आता है विचारों का, क्योंकि राइट मेथड से नहीं जाते। अब जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक आप उनकी तरफ पहुंचोगे नहीं। चिंतन ही हमारा मार्ग है, ठीक है? तो चिंतन करते रहो, फिर मन और बुद्धि को चिंतन द्वारा परम धाम ले जाओ। फ्लाइट कैसे, वो पहले रनवे पर होती है, फिर ऐसे होके फिर 30,000 फीट पर जाती है। तो हमने ही बनाया ना विमान, तो हमारे मन बुद्धि में वो ताकत है। पहले धरती पर होता है, इस देह के भान में होता है, संबंधियों के कार्यों के भान में होता है, धीरे धीरे फिर उसको विचिंतन द्वारा ऊपर ले जाना है और सीधा हमको परम धाम एकदम टोच पे, अंतरिक्ष से भी पार होते हुए। बीच में एक सूक्ष्म धाम भी आएगा, वो सफेद प्रकाश का धाम होता है, उससे भी ऊपर परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश के अनंत धाम तक जाना है। फिर वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाके अपने ऊर्जा स्वरूप में ही बैठ के अपने अनुभव करें, मैं कैसे अभी बिल्कुल सबसे न्यारा केवल अपने ऊर्जा स्वरूप में अपने निज धाम में बैठा हूं, पूर्ण शांति शुद्धता के धाम में बैठा हूं। फिर वहां क्या करेंगे, और सभी को आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करेंगे। अरे चाचा मामा सास ससुर सब जो है अभी बिल्कुल ऊर्जा स्वरूप में बैठे हैं सभी। फिर सारे विश्व को देखो ऊर्जा स्वरूप में, कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा। बहुत जरूरी है ये अभ्यास। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी, पर होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी देह को और अपने धर्म को देखते रहते हैं। हमको तो आत्मा के रूप में स्थित होके, आत्मा आत्मा भाई भाई है, उस स्वरूप का परमधाम में अभ्यास करना है। कभी किया ही नहीं, देखो कभी नहीं किया, करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो जानवर करेंगे, कौन करेगा, हम ही करेंगे, हम ही कर सकते हैं। तो इसीलिए अहंकार छोड़ जो सही करना है वो जरूर करो। हमको अहंकार हो गया, हम तो सारे जीव मात्र से भी एकदम उत्तम है योनियों में। वो अहंकार किस बात का, जो सही काम है वो नहीं कर रहे तो वो अहंकार किस बात का। इसीलिए हमको आत्मा आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद ये महसूस करना, इधर देखो मेरा कोई देह का धर्म ही नहीं, कैसे कोई जानेगा कि मैं हिंदू हूं या जैन हूं या बुद्ध हूं, पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा स्वधर्म क्या है, शांति और शुद्धता, बस मैं पवित्र और शांत आत्मा हूं, ये मेरा स्वधर्म है। जैसे पानी का धर्म शीतलता है ना, उसको कितना भी गर्म करो शीतल हो जाता है, ऐसे आत्मा का भी स्वधर्म शांति और पवित्रता है। तो इसीलिए वो अभ्यास करो, फिर परमात्मा शिव बाबा के सन्मुख जाओ। क्यों बाबा शब्द यूज किया है? दुनिया में बाबा शब्द गुरुओं के लिए बहुत यूज किया है, गुरुओं को बाबा बाबा, ये बाबा वो बाबा वो बाबा। लेकिन हमारी फैमिलीज में, भारत की संस्कृति में, आपको पता है बाबा किसको कहा जाता है? हमारी भारत की संस्कृति में बाबा शब्द किसके लिए यूज होता है? महाराष्ट्रियन बैठे हैं इधर, हाँ, बाबा किसको बोलते हैं घर में? पिताजी को। बंगाली बैठे हैं, किसको बाबा बोलते हैं? पिताजी को ना, बिल्कुल। सिंधी लोगों को पूछो, वो लोग भी उर्दू में भी बाबा बोलते हैं। तो ये गुरुओं को पता नहीं बाबा कैसे बोल दिया। हम आत्माओं के जो पिता है वो आत्मा का बाबा है। जब हमारे स्थापक को और उनके साथ वालों को पता चला कि अरे परमात्मा शिव बाबा ही हमारे माता पिता है आत्मा के, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम उनको बाबा बुलाएं? हम घर में पिताजी को बाबा बुलाते हैं, अब इनको भी बाबा बुलाएं, तो एटलीस्ट याद तो रहेगा कि मुझ आत्मा का बाबा कौन है, तो शिव परमात्मा। तो धीरे धीरे फिर हम शिव बाबा ही कहने लगे कि याद रहे मुझ आत्मा को कि वो मेरे माता पिता है ना। तो इसीलिए यहां बाबा शब्द गुरु के लिए नहीं है, पिताजी के लिए है, या प्लीज याद रख के जाना। यहां कोई आपको नया बाबा नहीं मिलेगा, इस संसार में कोई गुरु बाबा नहीं है। हम जिनको बाबा बुलाते हैं उनको हमने पिताजी का ही स्थान दिया है। अवन इवन ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बोला, आपको भी कभी माँ का कभी बाप का रोल बजाना पड़ेगा जितने भी संस्था में आएंगे उनके लिए। उन्होंने कभी अपने को गुरु की पदवी या भगवान ऐसे कुछ भी कभी नहीं कहा, जबकि उनको नाम शिव बाबा ने ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा दिया। उन्होंने कभी उनके लिए खास कोई सीट नहीं बनी, कभी नहीं, जिनके पर कोई दूसरा बैठता ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी सोने की जो खटिया थी, वो गांव वाली जो होती थी ना, सूतर की बनी हुई, उसी पर सोते थे वो, क्योंकि उनको माँ बाप का रोल बजाना था सब बच्चों के लिए। तो यहां पर बाबा शब्द माना पिता, फिर उनके सन्मुख जाकर उनके साथ बस अनुभव करो, बस अब मैं परम धाम में, मैं आत्मा अपने माँ बाप के साथ बैठी हूं, मेरे सर्व संबंधी के साथ बैठी हूं, बस थोड़े समय के लिए वो साइलेंस में रहो, बस उनके साथ उनकी प्रेजेंस फील करो, ऑटोमेटिक के गहरे साइलेंस की अनुभूति होगी अंदर। कभी तो आपको लगेगा अभी मुझे नीचे उतरना ही नहीं है, लेकिन उतरना पड़ता है कर्म के लिए। पर वो जो हम रहते हैं ना बाबा के साथ, वो हमें बहुत पावरफुल बैटरी चार्ज हो जाती है अपनी। हम बैटरी चार्ज करने के लिए बाबा के पास जाते हैं, हम अपनी मांगणियों के लिए नहीं जाते हैं, बैटरी चार्ज करने के लिए जाते हैं। हमको ये खुशी होती है कि अब मुझ आत्मा को अपनी ऊर्जा से नहीं, परमात्मा की ऊर्जा लेकर के काम करना है। आधा टेंशन कम हो जाता है, अब मेरी ऊर्जा ही नहीं है जो मुझे टेंशन हो, मैंने तो बाबा से ऊर्जा ली और अभी यूज करना है, और वो सदा वो ऊर्जा चालू ही रहती है, फिर स्टॉक अपना भरा हुआ ही रहता है। अगर आपको कोई कारण से लगे कि मेरा स्टॉक खत्म हो रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूं, जाके योग करो बैठ के, फिर आपका स्टॉक भर जाएगा, फिर आपको फ्रेश फील होगा, फिर कर्म में लग जाओ। मना ये क्या बोलेंगे, एक रेजुवेनेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है मेडिटेशन में। फिर उनसे मीठी मीठी बातें करो, करनी ही है, फिर उनसे सुनो भी, ऐसे नहीं प्रार्थना करके नीचे आ गए, प्रार्थना की बात नहीं है यहां, संबंधों के द्वारा बातचीत की बात करके केवल एक संकल्प पे आके टिक जाओ कि बाबा आज मुझे आपके ज्ञान स्वरूप की अनुभूति करनी है, मुझे आपके अंदर के निस्वार्थ प्यार की अनुभूति करनी है, मुझे अपने संबंधों को सुधारने की पावर की अनुभूति करनी है, बस। और वो रेडी है अपने को अनुभव कराने के लिए, तैयार है अपने को अनुभव कराने के लिए, केवल राइट थॉट देना चाहिए। आज बोला ना, कल दीदी ने, बड़ी दीदी ने बोला कि ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या सीखते हैं, तो सही विचार करना सीखते हैं। वो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा तभी होगा। तो इस रीति से थोड़ी देर शांति में वो एक संकल्प लेके बैठ जाने का और शिव बाबा को अपना कार्य करते देने का। ऐसे नहीं उठ गए योग से बोल के, बैठो, उनको भरने दो बाबा को शांति से बिल्कुल। और फिर मना, कई लोग होते हैं ना, मोबाइल चार्जिंग में रखा फिर भी फोन करेंगे, फिर भी रिंग बजी तो उठाएंगे, ऐसा नहीं, वो गलत है। लोग मना करते हैं मोबाइल वाले, तो भी हम करते हैं। ऐसे इसमें भी एकदम अपनी बात दे करके छूट नहीं जाने का, बैठो उनको भरने दो शांति से, उसके बीच में आप कुछ नहीं विचार करो। फिर उसके बाद वापस बाबा को शुक्रिया कर परम धाम से वापस जर्नी लेकर अपनी ब्रुकुटी के स्थान पर आ जाना है। आप ये 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, आपकी मर्जी है, लेकिन शुरू भले थोड़े टाइम से करो। जब आपकी मन बुद्धि को अभ्यास हो जाए तो फिर आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। विधि का पता चला, 2 प्रकार, कर्मयोग और बुद्धि योग। एक है बैठ के मेडिटेशन करना, एक है कर्म करते हुए भी कनेक्शन में रहना। चलो अभी 3-4 मिनट हम वो मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन का नाम क्या है? राजयोग। क्योंकि दुनिया में अनेक प्रकार के नाम होते हैं, कोई ये भी कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं, लेकिन राजयोग सिखाने वाला एक ही है, सबसे बड़ा राजा परमात्मा, वही शिक्षक है राजयोग का। वो किसको सिखाते हैं राजयोग? आत्मा को। ये राजयोग शरीर से भी ज्यादा आत्म उन्नति की अनुभूति कराता है। बाकी आपको शरीर में कोई तकलीफ है तो आप हठ योग की प्रैक्टिस, व्यायाम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप इस योग में होशियार होते जाएंगे तो आप अपने शरीर की भी, शरीर का इलाज, हीलिंग आप राजयोग से भी कर सकते हैं। पर शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में अपने आप हील कर सकते है ना। राजयोग में हर प्रकार की ताकत है ना। चलो चले, सीधा बैठे, अपने बैक को हमेशा सीधा रखना, नहीं तो आगे चल के आप बोलेंगे मेरे को गले का दर्द हो गया, मेरे को पीठ का दर्द हो गया। सीधा पहले से बैठे, सिर को एकदम सीधा रखे, ना ऊपर ना नीचे, ऐसे सीधा सामने देखें। जो ऊपर बिंदु स्वरूप दिखाया है, हम अभी केवल अपनी आंखों को स्थिर रखने के लिए उस तरफ देखेंगे, उस पर आंखों को टिका दो नॉर्मल वे में, ताकि आंखें इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब अपने आप को संकल्प दे, थोड़ी क्षणों के लिए मैं अपने शरीर रूपी साधन से, बाहर के वातावरण से, सगे संबंधी मित्रों से और कोई भी प्रकार के कामकाज से फ्री हो रहा हूं। मैं केवल अपने साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूं। इसलिए हर तरफ से अपने आप को संकीर्ण कर दो आंखों के पीछे मस्तिष्क के आगे भ्रुकुटी में अपने प्रकाश स्वरूप का दर्शन करें, जैसे कोई अंधेरी गुफा में दीपक जगा दिया। अब आजू बाजू का कुछ भी नजर नहीं आएगा, केवल दीपक पर ही ध्यान केंद्रित हो जाएगा। मैं सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्योतिर्स्वरूप ऊर्जा हूं, आत्मा हूं। मैं यहां भ्रुकुटी में सितारे के रूप से चमक रहा हूं। मैं आत्मा तत्व शरीर के तत्व से बिल्कुल अलग हूं। शरीर परिवर्तनशील है और विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। मैं अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं। मुझ आत्मा में अगाध शक्ति भरी हुई है, जो मन, बुद्धि और कर्म द्वारा यूज होती है। मुझ आत्मा की ऊर्जा शरीर के एक एक अंग तक निरंतर पहुंचती रहती है। महसूस करें आत्मा की ऊर्जा नाखून तक हर एक स्थान पर अपनी सेवा दे रही है। आत्मा कहती है अपना एक हाथ ऊपर करो, आत्मा कहती है उस एक हाथ को हिलाओ, आत्मा कहती है हाथ को अभी धीरे से नीचे रखो। आत्मा कहती है अपने एक अच्छे मित्र को याद करो, उसे दिल से धन्यवाद दो साथ देने के लिए। उसे मन से गले लगाओ, अपने अंदर की खुशी को महसूस करो। ये कौन कर रहा है सब? मैं आत्मा। अब मुझ आत्मा को इस शरीर रूपी साधन से न्यारा होकर अपने ही एक दृढ़ संकल्प से मैं इस शरीर के साधन को नीचे छोड़ती हूँ और मैं आत्मा ऊपर उड़ना आरंभ करती हूँ। इस हॉल के छत पर पहुंच जाते हैं हम सब बिंदु सितारों के रूप में, अब आकाश की ओर उड़ने लगते हैं, सभी को नीचे देखते रहते हैं साक्षी होकर के। देह की दुनिया को देख रहे हैं नीचे और ऊपर बादलों के आसपास। अब बादलों से भी ऊपर आकाश तत्व से पार होकर अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में संसार की लाइट नहीं है लेकिन हम तो सब ऊर्जा स्वरूप है ना, प्रकाश स्वरूप। सभी ग्रह नक्षत्र सितारों से पार होते हुए हम ऊपर अपने सूक्ष्म धाम में आते हैं। सफेद प्रकाश चांदनी से प्रकाश को महसूस करते हुए अब सूक्ष्म वतन से भी परे एक अनंत तत्व में प्रवेश करते हैं, सुनहरा लाल प्रकाश का तत्व, एकदम परिपूर्ण शांति और पवित्रता का धाम। हम एक जैसे स्वरूप में अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। सब आपस में प्रकाश स्वरूप ऊर्जा या कोई संबंध नहीं, कोई धर्म नहीं, बस आत्मा आत्मा भाई भाई। मुझ आत्मा का ये अविनाशी परिवार है, हम बिल्कुल फ्री होके, कोई भी कर्म कर्म का बंधन नहीं, संबंध नहीं, हर बंधन से मुक्त, बस अपनी ऊर्जा स्वरूप में बैठे हैं। अब हम धीरे से अपने पिता परमात्मा की ओर जाते हैं और बिल्कुल शिव बाबा जो भी प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है उनके एकदम समीप जाके बैठ जाते हैं। अब मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर है, सुख शांति के सागर है, उनके पास मैं उनकी संतान उनके संग के रंग में बैठी हूं। उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए बैठी हूं। अपने मन और बुद्धि का द्वार खुला रख, उनसे प्राप्त होती हुई शक्तियों को महसूस करती हूं। आज बस बाबा, आपका मेरे साथ जो अविनाशी संबंध है उसे जाना, आपको पहचाना। बाबा मैं तो अपने आप को भी भूल गया था, आज आपसे मेरा जो योग लगा है, कनेक्शन हुआ है, आपने ही ये कराया। मैं सदा आपके इस स्मृति में याद में रहूं। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। और बाबा से स्वीकृति लेते हुए हम फिर से सूक्ष्म वतन में आए और वहां से फिर आत्मा अंतरिक्ष में भी यही भासना हर एक ग्रह सितारे को देते हुए आकाश तत्व में आए और आकाश तत्व से नीचे आबू पर्वत पर हम सब सितारों रूपी रॉकेट आ चुके हैं और अभी डायमंड हॉल की छत पर और अब हॉल के अंदर हम फिर से अपने देह रूपी साधन में प्रवेश कर अपनी भ्रुकुटी के स्थान पर लौट आए और अपने इस अविनाशी कनेक्शन और मिलन की याद में रहे। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करीना बेन को, हमको इतना अच्छा समझाया भी और अनुभव कराया।